السلام علیکم، یہ پارٹ فور ہے، کتاب بلیک شارک، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ فور۔ نہیں شارگو، اسے مرنا نہیں چاہیے، میں اس کے بارے میں بلیک شارک سے بھی بات کر چکا ہوں۔ بلیک شارک نے مجھے اس سے معلومات حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھے بلیک شارک کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے تم خود جا کر اسے تلاش کرو اور اسے بلیک کیج میں لاؤ، میں اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں، ماسٹر دوہم نے کہا۔ یس ماسٹر، میں خود جا کر اسے تلاش کرتا ہوں، نوجوان نے کہا، جیسے ماسٹر دوہم نے شارگو کہا تھا۔ اس نے ماسٹر دوہم کو سلوٹ کیا اور پھر مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہونیا، اب تو مجھے بھی اس اسرائیلی ایجنٹ پر شک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگر وہ میرے آدمیوں کی تلاشی کے باوجود اپنے لباس کے ریسکیٹر میں چھپا کر رکھ سکتا تھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی موجود ہو۔ آدمیوں کی تلاشی کے باوجود اپنے لباس میں ریسکیٹر چھپا کر رکھ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے واقعی اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی موجود ہو، وہ بلگارنیا سے اڑا لایا ہو، اور اس چیز کی وجہ سے بلگارنیا ہمیں لاکھوں کروڑوں ڈالرز دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر وہ چیز اسرائیل کے مفاد میں ہوئی تو ہم اسرائیل سے بھی اربوں ڈالرز وصول کر سکتے ہیں، ماسٹر ڈوہم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور وہ اٹھا اور پھر دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر وہ نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنا شروع ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ نے کہیں غلطی سے ساحل حصے میں پہنچ کر سمندر میں نہ چھلانگ لگا دی ہو کہ وہ سمندر میں تیرتا ہوا کسی طرف نکل جائے گا۔ اس کے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا، کیونکہ اس جزیرے کے ساحلی حصوں میں مگرمچھ آباد تھے اور جزیرے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں ٹائیگر شارکس موجود تھیں جو انسانی خون کی بھو پاتے ہی بجلی کسی تیزی سے لپکتی تھی، اور سمندر میں موجودہ انسان کو ایک لمحے میں اپنے جبڑوں میں دبوچ کر لمبے اور نوکیلے دانتوں سے اس کے ٹکڑے اڑا دیتی تھی۔ جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا ماسٹر ڈوہم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یوں لگنا شروع ہو گیا تھا جیسے اسرائیلی ایجنٹ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور اب اس کا واپس آنا ناممکن ہے۔ اس کے لیے یہ بات انتہائی روح فرسا تھی کہ اسے بلیک شارک کو اسرائیلی ایجنٹ کے بارے میں جواب دینا مشکل ہو سکتا تھا۔ بلیک شارک اس کی قید سے اسرائیلی ایجنٹ کے بھاگنے کا سخت نوٹس لے سکتا تھا، اور اس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ کے بھاگنے کی ساری ذمہ داری وہ اسی پر عائد کر دیتا۔ ایسی صورت میں بلیک شارک فوری طور پر اس کے بلیک وارنٹ جاری کر دیتا اور اسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیا جاتا۔ ان معاملات میں بلیک شارک بے حد سخت تھا اور وہ بلیک پائریٹ گروپ کے کسی ممبر کی معمولی سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹ کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ماسٹر ڈوہم پر حاوی ہوتا چلا جا رہا تھا کہ وہ خوف کے باعث اس کے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے انتہائی بے چینی کے عالم میں بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی دروازہ کھلے گا اور شارگو اس کے لیے موت کا پیغام لے کر آ جائے گا۔ اسرائیلی ایجنٹ جزیرے سے فرار ہوتے ہوئے موت کا شکار ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے اسرائیلی ایجنٹ کے فرار ہونے کی رپورٹ اسے بلیک شارک کو دینی ہی تھی، اور اسی رپورٹ کے ملتے ہی بلیک شارک اسے بھی موت کا مرسودہ سنا دیتا، جس سے بھاگ نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ تقریباً دو گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی تو ماسٹر ڈوہم بری طرح سے اچھل پڑا اور انتہائی خوف بھری نظروں سے دروازے کی جانب دیکھنا شروع ہو گیا۔ آ جاؤ، ماسٹر ڈوہم نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ وہ دروازے کی جانب انتہائی حسرت بھری نظروں سے دیکھے رہا تھا، جیسے دروازہ کھلتے ہی اسے واقعی اس کی بھیانک موت کا پیغام ملنے والا ہو۔ دروازہ کھلا اور شارگو اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون کے تاثرات تھے، اس نے ماسٹر ڈوہم کو سلوٹ کیا۔ کیا ہوا اسرائیلی ایجنٹ کا وہ ملا ہے کہ نہیں؟ मास्टर डॉम ने इसकी जानिब उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा। यस मास्टर, वो मिल गया है, शार्गो ने कहा, और इसका जवाब सुनते ही जैसे मास्टर डॉम के तने हुए असाब ढीले पड़ते चले गए। इसका रुका हुआ सांस बहाल हो गया और इसके दिल की धड़कनें जो खौफ के बाइस कम हो गई थी एक बार फिर नॉर्मल हो गई। इसके चेहरे पर इंतहाई सुकून के तासुरात नमूदार हो गए। कहां से मिला है वो? मास्टर डोहम ने पूछा। वो शुमाली साहिल की तरफ भाग गया था। उसका इरादा यही था कि वो समंदर में कूदकर किसी तरफ निकल जाएगा, लेकिन साहिल पर बेशुमार मगरमच्छ मौजूद थे जिन्हें देखकर उसने शायद समंदर में कूदने का इरादा बदल लिया था। इस तरफ चट्टानी इलाका है और हमसे छुपने के लिए चट्टानों के पीछे चला गया था, लेकिन वो शायद ये नहीं जानता था कि चट्टानों के नीचे सुर्ख कीड़े और सुर्ख बिच्छू भी हो सकते हैं। उसे शायद वहां कोई सुर्ख कीड़ा या सुर्ख बिच्छू दिखाई दे गया था जिसे देखते ही वो चीखता चिल्लाता हुआ चट्टानों के पीछे से निकलकर बाहर आ गया। इस तरफ मेरे चंद साथी मौजूद थे, उन्होंने जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने जेब से एक कलम नुमा रेस्किटर निकाला और उससे मेरे साथियों पर हमला कर दिया, लेकिन मेरे साथियों ने उसे काबू करने के लिए उस पर निडिल गन से फायरिंग करना शुरू कर दी। एक निडिल बुलेट उससे लगी और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। जैसे उसी वक्त काबू कर लिया गया और फिर आपके हुक्म से अब मैंने उसे ब्लैक केज में पहुंचा दिया है, शार्गो ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, क्या इसे होश आ गया है या वो निडिल ब्लड की वजह से अभी तक बेहोश है? मास्टर डोहम ने पूछा। फिलहाल तो वो बेहोश ही है, लेकिन आप चाहें तो मैं इसे वीटी सुंगा कर होश में ला सकता हूँ, शार्गो ने कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, मास्टर डोहम ने कहा। तो शार्गो ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों कमरे से निकलते चले गए। ये घने जंगल के वसत में बना हुआ लकड़ी का बड़ा सा केबिन था जिसके इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार केबिन बने हुए थे जहां मास्टर डोहम और इसके ग्रुप के अफराद रहते थे। ये इलाका सोमालिया के शुमाल में मौजूद एक जजीरे का था जिसे कसाती जजीरा कहा जाता था। इस जजीरे के इर्द गिर्द चूंकि टाइगर शार्क और 20-20 फुट लंबे और ताकतवर मगरमच्छ रहते थे, इसलिए कोई गलती से भी इस जजीरे की तरफ आने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि समंदर में रहने वाले खौफनाक मगरमच्छ इस जजीरे के किनारे की तरफ रहते थे और इस तरफ आने वाले इंसानों को आसानी से अपना शिकार बना लेते थे। मास्टर डॉम इसके साथियों ने इसे जजीरे पर कब्जा कर रखा था और इस जजीरे पर महफूज रास्तों से आते थे। मगरमच्छ चूंकि साहिल के किनारे पर रहते थे इसलिए उन्होंने अपना पड़ाव जजीरे के वसत में डाल रखा था और वहां हर तरफ छोटे बड़े लकड़ी के केबिन बना रखे थे। अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने वहां खातिर ख्वाह इंतजाम कर रखा था और उनके केबिन चूंके घने दरख्तों में बने हुए थे इसलिए इन्हें किसी हेलीकॉप्टर और जहाज से तो क्या सैटेलाइट से भी चेक नहीं किया जा सकता था। चूंकि ब्लैक पायरेट एक बड़ा और इंतहाई ताकतवर और फाल सिंडिकेटेड बन चुका था इसलिए उन्होंने जजीरे पर अपनी हिफाजत के लिए कई साइंसी इंतजाम भी कर रखे थे। यही वजह थी कि उनकी तलाश में आने वाली कोई फोर्स इस जजीरे तक नहीं पहुंच सकी थी और अगर फोर्स यहां आ भी जाती तो उन्होंने इस जजीरे पर ऐसे इंतजाम कर रखे थे कि फोर्स को इनकी मौजूदगी का एक मामूली सा निशान भी नहीं मिल सकता था। इनके केबिन बजाही लकड़ियों के बने हुए थे लेकिन इन केबिनों को महफूज करने के लिए उन्होंने दोहरा काम कर रखा था। वो चाहते तो इन केबिनों को जमीन के अंदर धसा सकते थे और जब केबिन जमीन के अंदर चले जाते तो ऊपर से जमीन बराबर हो जाती थी और बाहर ऐसा कोई निशान नहीं दिखाई देता था जिससे पता चलता कि यहाँ लकड़ियों के केबिन भी बने हो सकते हैं। इसी तरह उन्होंने दरख्तों और जजीरों के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा जमा रखा था ताकि वो जजीरों के चारों तरफ नजर रख सकें। समंदर में भी इनकी जंगली मोटर बोट्स और लांचों के साथ साथ चंद ओवरग्राफ्ट भी दौड़ते रहते थे जो चारों तरफ से समंदर की हिफाजत करते और वो दूर से आने वाली किसी भी فورس کا آسانی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. جزیرے پر ماسٹر ڈوہم کی سربراہی میں بڑی تعداد میں فورس موجود تھی، بلیک فورس کے نام سے منسوب تھی. اس فورس کے تمام افراد کا تعلق صومالیہ اور افریقہ کے مختلف حصوں سے تھا، جن میں ایک سے بڑھ کر ایک صفاق بے رحم اور شیطان صفت جرائم پیشہ افراد موجود تھے. سمندر سے اغوا کیے جانے والے جہازوں کے مسافروں کی دیکھ بھال اور ان کے بارے میں چھان بین کرنے کے تمام ذمہ داری ماسٹر ڈوہم کی ہی تھی. اس نے یرغمالیوں کو ایک جگہ رکھنے کے لیے زمین دراز تہہ خانے بنوا رکھے تھے، جہاں یرغمالیوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا اور ان کی دن رات بھرپور نگرانی کی جاتی تھی. ماسٹر ڈوہم جب تمام مسافروں کی چارج پڑتال کر لیتا تو وہ ان میں سے ایسے افراد کو الگ کر لیتا تھا جن کے ذریعے بلیک پائرٹ کو بھاری تاوان حاصل ہو سکتا. ان میں بوڑھوں عورتوں بچوں کو الگ کر دیتا اور جن کے متعلق اسے یقین ہو جاتا کہ ان کے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے انہیں کچھ ملنے کی امید ہے، تو وہ ایسے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتا. ماسٹر ڈوہم انتہائی سنگ دل اور درندہ صفت انسان تھا. وہ جن قیدیوں کو ناکارا سمجھتا تھا انہیں انتہائی بے رحمی اور صفاقی سے ہلاک کرتا تھا. وہ ان قیدیوں کو ہلاک کرنے کے لیے باقاعدہ جزیرے پر ایک جشن کا اہتمام کرتا تھا اور پھر قیدیوں کو عزائیں دیتے ہوئے انتہائی سنگ دلانہ انداز میں ہلاک کرتا تھا. کبھی وہ قیدیوں کو کسی ایسے کچڑے سے بھرے ہوئے تالاب میں ڈال دیتا تھا جس میں مگرمچھ چھپے ہوئے ہوتے تھے، جو ان قیدیوں پر حملہ کر کے انہیں ایک لمحے میں چیر پاڑ دیتے تھے. کبھی وہ قیدیوں کو جزیرے پر دوڑاتا رہتا تھا اور پھر انہیں گولیاں مار دیتا تھا، اور کبھی وہ انسانوں کو ایک ساتھ باندھ کر انہیں زندہ بھی جلا دیتا تھا. اس فعال سے اسے بے حد تقویت حاصل ہوتی تھی اور وہ انسانی چیخیں سن کر اور انسانوں کو تڑپتا دیکھ کر بے حد سکون محسوس کرتا تھا. اس کی شیطانیت کی انتہا تھی کہ وہ اس معاملے میں بوڑھوں عورتوں اور معصوم بچوں کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کرتا تھا اور انہیں بھی اذیتوں سے دوچار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا. ماسٹر ڈوہم اور شارگو کیبن سے نکل کر درختوں کے جھنڈ سے ہوتے ہوئے مختلف راستوں سے گزر کر ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے میں آ گئے. وہاں چاروں طرف سیاہ فام جنہوں نے شارگو جیسے لباس پہن رکھے تھے اور سروں پر سرخ رنگ کی ٹوپیاں پہن رکھی تھی گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے. ماسٹر ڈوہم کو دیکھ کر وہ نہ صرف اپنی جگہوں پر رک جاتے تھے بلکہ اسے باقاعدہ فوجی انداز میں سلوٹ بھی کرنا شروع کر دیتے تھے. شارگو اور ماسٹر ڈوہم ایک پہاڑی کے پاس آ کر رک گئے. اس پہاڑی کے نیچے ایک بڑی سی چٹان موجود تھی. شارگو آگے بڑھا اور اس نے چٹان کے پاس جا کر نہ جانے کیا کیا کہ چٹان تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کسی وہل کی طرح گھومتی ہوئی ایک طرف ہٹتی چلی گئی. چٹان کے ہٹتے ہی پہاڑی میں ایک غار نما ہول دکھائی دینے لگا. یہ غار زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا. غار گول اور بے ڈھنگے انداز میں بنا ہوا تھا جو چاروں طرف سے دکھائی دے رہا تھا. کیونکہ غار زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا اس لیے دہانا کھلتے ہی اندر تیز روشنی پھیل گئی تھی. غار کے درمیانی حصوں میں ایک فولادی کرسی پڑی ہوئی تھی جس کے پائے زمین میں گڑے ہوئے تھے. غار کی دیوار پر عزائیں دینے والی بے شمار آلات لگے ہوئے تھے جن پر باقاعدہ خون لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا. گو کے خون خشک ہو کر سیاہ ہو چکا تھا، لیکن بہرحال ان آلات کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ان سے بے شمار انسانوں پر شدید تشدد کیا گیا ہو، اور تشدد کرنے کے بعد ان انسانوں کے انہیں آلات سے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں. کرسی پر ایک دبلا پتلا سفید فام نوجوان رسیوں سے بری طرح سے بندھا ہوا تھا. اس نوجوان کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے زخموں کے جا بجائے نشان دکھائی دے رہے تھے. اس نے جینز اور سیاہ رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی. نوجوان کا سر ڈھلکا ہوا تھا، شاید اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا. ماسٹر ڈوہم اور شارگو غار میں داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس نوجوان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. اس سے ریس کیٹر حاصل کیا ہے تم نے؟ ماسٹر ڈوہم نے پوچھا. یس ماسٹر، شارگو نے جواب دیا اور اس نے اپنے لباس की जेब से एक छोटा सा कलम निकालकर मास्टर डोहम की जानी बढ़ा दिया। कलम सिया रंग का था और देखने में एक आम सा कलम दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके सर पर टिप की जगह ताकतवर लेंस लगे हुए थे जिससे रेस्किटर फायर की जा सकती थी और इस रेस्किटर से मजबूती से मजबूत फौलाद को भी आसानी से काटा जा सकता था। कलम के पिछले हिस्से पर एक बटन लगा हुआ था। मास्टर डोहम ने कलम का रुख दाएं से तरफ पड़े हुए एक पत्थर की जानिब किया और फिर कलम पर लगा हुआ बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने बटन प्रेस किया, कलम के सर से सुर्ख रंग की एक बारीक सी लकीर निकली और पत्थर पर पड़ने लगी। मास्टर डोहम ने हाथ को हरकत दी तो सुर्ख रेस पत्थर पर तेजी से चली और एक सिया लकीर सी बनाती चली गई। दूसरे लम्हे पत्थर यूं कटकर दाएं बाएं गिर गया जैसे इसे किसी इंतहाई तेज धार आले से काट दिया गया हो। बड़ी ताकतवर रेजर है, मास्टर डोहम ने बटन से उंगली को हटाते हुए कहा। बटन से उंगली हटते ही कलम से निकलनी बंद हो गई। यस मास्टर, इस रेजर से उसने फौलादी जंजीरें काटी थी और इस रेजर की मदद से उसने हमारे कई साथियों की गर्दनें भी काट दी थी और उसने साहिली चट्टानों के पास हमारे जिन साथियों पर हमला किया था उस रेजर से उसने उनके आधे धड़ ही काट कर रख दिए थे। अगर इस पर फौरी तौर पर निडिल ब्लड फायर ना की जाती तो ये वहां मौजूद तमाम अफराद को इस रेस्किटर से हलाक कर सकता था, शार्गो ने जवाब देते हुए कहा। हो ना हो, उसने हमारे जितने साथियों को हलाक किया है इनके खून के एक एक कतरे का अब इसे हिसाब देना पड़ेगा। तुम इसे होश में लाओ जल्दी, मास्टर डोहम ने कहा। यस मास्टर, शार्गो ने अजबात में सर हिलाकर कहा और उसने लिबास की जेब से एक लंबे मुंह वाली सिया रंग की बोतल निकाली। इस बोतल के मुंह पर एक कार्क लगा हुआ था। वो आगे बढ़ा और उसने बेहोशी इसराइल एजेंट के करीब जाकर बोतल का रुख खींचकर निकाल लिया। फिर उसने एक हाथ से इसराइली एजेंट का सर बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई सिया बोतल का मुंह उसने इसराइली एजेंट की नाक से लगा दिया। जैसे ही उसने बोतल का मुंह इसराइली एजेंट की नाक से लगा, उसका जिस्म कसमसाना शुरू हो गया। उसे कसमसाते देखकर शार्गो ने बोतल उसकी नाक से हटाई और उसका सर छोड़कर पीछे हट गया। नौजवान के जिस्म की अचानक हरकत होना शुरू हो गई। फिर अचानक उसने जोर जोर से छींके मारनी शुरू कर दी। दो तीन छींके मारते ही उसकी आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही उसने लाशौरी के आलम में इधर उधर देखा। फिर जैसे ही उसका शऊर जागा, उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर वो बौखला कर रह गया कि वो एक फौलादी कुर्सी से रस्सियों के साथ मजबूती से बंधा हुआ है। उसने बौखला कर पहले अपने सामने खड़े देव कयामत सिया फामों की तरफ देखा और फिर जैसे ही उसकी नजरें दीवारों पर लगे हुए अजाएं देने वाले आलात पर पड़ी, उसका रंग उड़ता चला गया। कुक कुक क्या मतलब, ये मैं कहाँ हूँ और तुम दोनों कौन हो? इसराइली एजेंट ने दीवारों पर लगे आलात और उन दोनों सिया देहों की जानिब देखते हुए इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम इस वक्त ब्लैक केज में हो मिस्टर ह्यूमन उर्फ मिस्टर रेवन, मिस्टर अरमन उर्फ मिस्टर रेवन, मास्टर डोहम ने इसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। ब्लैक केज क्या मतलब? रेवन ने आंखें फाड़ते हुए कहा। ये एक ऐसा अकूबत खाना है जहां आने वाला इंसान या तो अपनी जुबान से बोलता है या फिर इन आलात के तशद्दुद से जख्म खाकर इसका एक एक जख्म चीखना और चिल्लाना शुरू हो कर देता है। अब तुम खुद फैसला कर लो कि तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब तुम जबान से दोगे या फिर हम तुमसे कुछ उगलवाने के लिए इन आलात का इस्तेमाल करें। फैसला तुम्हारे हाथ में है, इसलिए खूब अच्छी तरह से सोचकर जवाब देना, मास्टर डोहम ने गर्राहट भरे लहजे में कहा। तो रेवन खौफ भरी नजरों से इसकी तरफ और दीवारों पर लगे आलात देखना शुरू हो गया। खून आलूद आलात देखकर उसके जिस्म पर फुरफुरियां सी दौड़ना शुरू हो गई थी और वो बार बार खुश होते हुए होठों को अपनी जुबान से तर करने की कोशिश कर रहा था। कुक-कुक, क्या पूछना चाहते हो तुम? रेवन ने इसी तरह से हकलाते हुए कहा। तुम्हारा असली नाम क्या है? गवांग ने पूछा। तुम जानते हो मेरे सारे कागजात इसके पास हैं जिनमें मेरा असली नाम मौजूद है। रेवन ने आंखों से मास्टर डोहम के साथ खड़े शार्गो की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, इन कागजात से ही मुझे पता चला है कि तुम इसराइली एजेंट हो और बल्गानिया में जासूसों की गर्ज से गए थे। मास्टर डोहम ने कहा, जब तुम्हें मालूम है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? रेवन ने मुंह बनाकर कहा और हैरत अंगेज तौर पर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम बल्गानिया के एटमी प्रोग्राम्स के बारे में मालूमात हासिल करने गए थे? मास्टर डोहम ने पूछा तो रेवन चौंक पड़ा और हैरत से इसकी शक्ल देखने लगा। इसे इस बात का कैसे इल्म हुआ कि वो बल्गानिया में इनके एटमी प्रोग्राम की जासूसी करने के लिए गया हुआ था? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? रेवन ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मास्टर डोहम के सवाल का जवाब दो सीधी तरह, उससे अपनी तरफ से कोई सवाल मत करो वरना तुम्हारा अंजाम भयानक होगा, शार्गो ने गर्राते हुए कहा। बताऊं क्या मालूमात मिली है तुम्हें बल्गानिया के एटमी रिएक्टर्स के बारे में? मास्टर डोहम ने इसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। कुछ खास नहीं, इनकी एटमी लेबोरेटरी इंतहाई खुफिया है जिनके बारे में मैं मालूम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैंने इन लेबोरेटरियों को ट्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका था। रेवन ने जवाब देते हुए कहा। किस लेबोरेटरी को तलाश कर रहे थे तुम? मास्टर डोहम ने पूछा। मैंने कोई एक लेबोरेटरी मखसूस नहीं की थी, वहाँ उस वक्त कई लेबोरेटरियाँ काम कर रही थी जिनकी सही तादाद का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं कोशिश कर रहा था कि इनमें से मुझे किसी एक ऐसी लेबोरेटरी का पता चल जाए तो मैं या तो इस लेबोरेटरी को तबाह कर दूँ या इसके बारे में इसराइली हुकूमत को आगाह कर दूँ ताकि वो इसका तदरुक कर सकें, लेकिन मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। बल्गानिया ने लेबोरेटरियों की सीक्रेट रखने के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम कर रखे हैं जिनके बारे में मालूम करना जुवाए शेर लाने से कम नहीं है, रेवन ने जवाब दिया। हो ना हो, मुझे तो तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम बल्गानिया से एक इंतहाई अहम राज चोरी करने में कामयाब हो गए हो और वो राज लेकर तुम बल्गानिया से निकलकर इसराइली वापस जा रहे थे। मास्टर डोहम ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। उसने अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर रेवन बुरी तरह से चौंक पड़ा। कुक कुक, क्या कहा? मैं बल्गानिया का अहम राज चोरी कर लाया हूँ, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो अपना काम खत्म करके हुकूमत को ईमा पर वापस जा रहा हूँ, रेवन ने फौरन कहा, लेकिन उसके लहजे का खोखलापन मास्टर डोहम ने फौरन महसूस कर लिया। उसके होठों पर युक्लत इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। मेरी इत्तला गलत नहीं हो सकती, रेवन, बताओ तुम बल्गानिया से कौन सा राज लेकर इसराइल वापस जा रहे थे? मास्टर डोहम ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। नहीं, ये झूठ है, मैंने कहा है ना मेरे पास कोई राज नहीं है, रेवन ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा। सोच लो, मैं तुमसे अभी जबान से बात कर रहा हूँ, अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तुम्हारा इस कदर भयानक हशर करूँगा कि मरने के बाद भी तुम्हारी रूह सदियों तक बिलबिलाती रहेगी। तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं ब्लैक पायरेट का मास्टर डोहम हूँ और मास्टर डोहम को यहाँ सिया जल्लाद कहा जाता है। अगर मैं सिया जल्लाद बन गया तो फिर मैं तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी अलग कर दूंगा, तुम मेरे तशद्दुद की ताप नहीं ला सकोगे, मैं तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। और ये भी सुन लो, इस जजीरे पर मेरा राज है और मेरे हुक्म के बगैर यहाँ किसी को मौत भी नहीं आ सकती। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम्हें मौत भी नहीं आएगी और मेरा तशद्दुद बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। मास्टर डोहम ने इस बार किसी जख्मी भेड़िए की तरह गर्राते हुए कहा। मम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई राज नहीं है, मम, मैं। मास्टर डोहम का गजबनाक लहजा सुनकर रेवन ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। एक बार फिर सोच लो मिस्टर रेवन, इसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, तुम्हारा ये रेस कीटर मेरे पास है। तुमने जिस तरह इस रेस कीटर से फौलादी जंजीरें काट कर इस जजीरे से फरार होने की कोशिश की थी और इस रेस कीटर से मेरे साथियों को मौत के घाट उतारा था, मैं इसी रेस कीटर से तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा काटना शुरू कर दूंगा। रेस कीटर में उस वक्त तक ऑफ नहीं करूंगा जब तक कि तुम मुझे सच और सिर्फ सच नहीं बता दोगे। मास्टर डोहम ने रेवन का रेस कीटर उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा और उसके हाथ में अपना रेस कीटर देखकर रेवन का रंग जर्द पड़ गया। नन नन नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये रेस कीटर इंतहाई खौफनाक है, इससे एक लम्हे में फौलादी चट्टान को भी काटा जा सकता है, इसे मुझ पर इस्तेमाल ना करना प्लीज प्लीज, रेवन ने खौफ भरे लहजे में कहा। तो फिर इस राज के बारे में बताओ जो तुम बल्गार्निया से लाए हो। तुम्हारी जबान सच बोलकर ही तुम्हें इस रेस कीटर की अजियत से बचा सकती है, मास्टर डोहम ने कहा। मम मैं तुम्हें सच बता चुका हूँ, रेवन ने इसी अंदाज में कहा। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, तुमने ये मौका खुद ही गवा दिया है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, अब तुम अपने इस रेस कीटर से कटने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हारे हाथों की उंगलियों काटूंगा, फिर तुम्हारे पैरों की उंगलियां काटूंगा, इसके बाद भी अगर तुम ना बोले तो मैं तुम्हारे दोनों कान नाक होंठ और फिर तुम्हारे दोनों बाजू और इसके बाद तुम्हारी दोनों टांगे काट दूंगा। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक तुम बल्गार्निया से हासिल किए गए राज के बारे में मुझे सब कुछ नहीं बता देते, मास्टर डोहम ने गड़ाते हुए कहा। नन नन नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं रेवन ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। शार्गो, मास्टर डोहम ने इस बार शार्गो से मुखातिब होकर इंतहाई दर्द लहजे में कहा। यस मास्टर, शार्गो ने इंतहाई मधुवाना लहजे में कहा। इसका दाया हाथ पकड़कर सीधा करो, मैं शुरुआत इसके दाएं हाथ की उंगली काट कर करूंगा, मास्टर डोहम ने इंतहाई सफाकाना लहजे में कहा। यस मास्टर, शार्गो ने इसी अंदाज में कहा और वो तेजी से बंधे हुए रेवन की जानिब बढ़ा और उसने कुर्सी के पाए के साथ बंधे हुए रेवन का हाथ पकड़कर उसकी उंगली सीधी करनी शुरू कर दी। रेवन बुरी तरह से चीख रहा था और वो मुट्ठी बंद करके उंगली भीज रहा था, लेकिन शार्गो ने उसकी कलाई को दो उंगलियों से पकड़कर दरमियानी हिस्से को इस कदर जोर से प्रेस किया कि रेवन के हलक से जोरदार चीख निकली और उसके हाथों की उंगलियां खुद ब खुद सीधी हो गई होती चली गईं। मास्टर डोहम आगे बढ़ा और उसने रेवन की सबसे छोटी उंगली को सर से पकड़ा और दूसरे हाथ में मौजूद रेस कीटर की नोक उसकी छोटी उंगली की जड़ के करीब कर दी। उसका अंगूठा कलम के बटन पर था। रेवन कुर्सी पर बुरी तरह से मचल रहा था, लेकिन शार्गो ने उसकी कलाई इस कदर मजबूती से पकड़ रखी थी कि वो कोशिश के बावजूद अपनी उंगलियां बंद नहीं कर सकता था। इस हीले में मास्टर डोहम ने बटन प्रेस किया, कलम के सर से सुर्ख रोशनी की लकीर निकल कर रेवन की छोटी उंगली की जड़ पर पड़ी तो दूसरे ही लम्हे गार रेवन की इंतहाई दिलगर्श और दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। इसकी छोटी उंगली कटकर मास्टर डोहम के हाथ में आ गई थी। इसकी उंगली के कटे हुए जख्म से खून का फवारा सा छूट पड़ा था। खून देखकर मास्टर डोहम की आंखों में चमक सी आ गई। उसने रेवन की कटी हुई उंगली उठाई, साइड में उछाली और उसकी दूसरी उंगली पकड़ ली। फॉर गॉड सेक, बस करो, मैं कुछ भी नहीं जानता, रेवन ने हलक के बल चीखते हुए कहा, लेकिन मास्टर डोहम के कान जैसे बंद थे, वो रेवन की आवाज सुन ही नहीं रहा था। उसने एक बार फिर रेस कीटर का बटन प्रेस करके हाथ झटका तो रेवन की दूसरी उंगली भी कटकर उसके हाथ में आ गई। इस बार रेवन का सारा जिस्म बुरी तरह से फड़क उठा था। उसके हलक से फलक शगाफ चीखें उबल पड़ी और उसके मुंह से मुलगजात का तूफान सा उमट पड़ा, लेकिन मास्टर डोहम और इसके साथ शार्गो के चेहरे पर इसके लिए रहम का कोई अनासिर नहीं था। मास्टर डोहम एक एक करके रेवन की सारी उंगलियां काटता चला गया। जब रेवन के हाथ का अंगूठा कटा तो उसकी हालत इस कदर गैर हो गई कि वो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गया। होश में लाओ इसे, मुझे बेहोश इंसान पर तशद्दुद करके सुकून नहीं मिलता। मास्टर डोहम ने रेवन को बेहोश होते देखकर शार्गो से मुखातिब होकर घबराहट भरे लहजे में कहा, तो शार्गो ने इस्बात में सर हिलाकर इसे एक बार फिर जेब से वही लंबे मुंह वाली सिया बोतल निकाली जिस पर कार्क लगा हुआ था। उसने बोतल के मुंह से कार्क हटाया और बोतल का मुंह एक बार फिर रेवन की नाक से लगा दिया। रेवन को एक जोरदार झटका लगा और उस बार उसे फौरन ही होश आ गया। होश में आते ही एक मर्तबा फिर उसके मुंह से रेवन को एक जोरदार झटका लगा और उसके इस बार उसे फौरन ही होश आ गया। होश में आते ही एक मर्तबा फिर उसके मुंह से इंतहाई दर्दनाक चीखों का तूफान निकलना शुरू हो गया। वो रस्सियों में बंधे हुए अपने जिस्म को जोर से झटक रहा था, लेकिन वो इस कदर मजबूती से बंधा हुआ था कि वो किसी भी तरह खुद को इन बेरहम दरिंदों से आजाद नहीं करा सकता था। तुम्हारे एक हाथ की सारी उंगलियां कट चुकी हैं रेवन, अब दूसरे हाथ की बारी है, मास्टर डोहम ने इंतहाई सफाकाना लहजे में कहा। इसके लहजे में इस कदर ठहराव और खौफनाक पन था कि रेवन के साथ साथ इसका साथी शार्गो भी यकबारगी लरस कर रह गया। तुम इंतहाई बेरहम जालिम और दरिंदा सफत इंसान हो, तुम जैसा सफा को बेरहम इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा, रेवन ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा, तो मास्टर डोहम इंतहाई जहरीले अंदाज में हंस पड़ा। अभी तुमने मेरी सफा की और दरिंदे की शक्ति देखी कहाँ है रेवन, मैं तो तुम पर तुम्हारा ही हथियार इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मेरा जुल्म और मेरी दरिंदगी की इंतहा देखनी है तो इसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुम्हारे साथ जहाज से जो मुसाफिर उतारे गए हैं इनमें से चंद एक ही जिंदा रह गए हैं, बाकी सबको मौत के घाट उतार दूंगा। इनकी मौत देख कर तुम्हारी रूह भी न लरज उठी तो मेरा नाम मास्टर डोहम नहीं, मास्टर डोहम ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तुम चाहते क्या हो मुझसे, रेवन ने लरसते हुए लहजे में पूछा। वो राज जो तुम बलगार्निया से लाए हो, मास्टर डोहम ने उसी अंदाज में कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बलगार्निया से कोई राज लाया हूँ, रेवन ने सर मारते हुए कहा। मेरी आंखों में इतनी ताकत है कि मैं दूसरों की आंखों में झांक कर दूसरों के दिमागों में छुपे हुए ख्यालात को भी पढ़ लेता हूँ। मुझे तुम्हारी आंखों के पीछे एक ऐसा गहरा राज दिखाई दे रहा है जो बलगार्निया के मुतालिक है, और इस राज की बदौलत या तो इसराइली बलगार्निया को अपने कदम पर झुकने पर मजबूर कर सकता है या फिर बलगार्निया को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा नुकसान जिसकी तलाफी करना बलगार्निया के लिए नामुमकिन हो सकता है, मास्टर डोहम ने रेवन की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। और इसकी बात सुनकर रेवन ने बेख्तियार जबड़े भींच लिए। अगर मैं तुम्हें इस राज के बारे में बता दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे, रेवन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मास्टर डोहम के सामने जैसे हथियार डालते हुए कहा। उसे शायद इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो इस जजीरे से किसी भी तरह बचकर नहीं निकल सकता, और इसके सामने जो दरिंदा सिफत इंसान खड़ा है वो इस पर जुल्म और तशद्दुद करके इसका हशर कर सकता है। इसकी बात सुनकर मास्टर डोहम की आंखें चमक उठी। ठीक है, मुझे मंजूर है, अगर तुम मुझे इस राज से आगाह कर दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी की जमानत देता हूँ। और ये भी सुन लो, मैं अगर जलाद का जलाद हूँ तो अपनी जुबान का भी पक्का हूँ। एक बार मैं जैसे जबान देता हूँ उससे कभी नहीं पीछे हटता। तुम जिंदा भी रहोगे और मैं तुम्हें राज बताने के बदले में इनाम भी दूंगा, और ये इनाम तुम्हारा यहाँ से जिंदा सलामत निकलना होगा। हमारे पास ऐसे जराए हैं कि हम तुम्हें अपनी हिफाजत में तुम्हारे वतन पहुँचा सके, मास्टर डोहम ने कहा। ओ, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुम मुझे वाकई इसराइल पहुंचा दोगे, रेवन ने चौंकते हुए और इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि तुम सारा राज उगल दो और तुम्हारे पास राज की शक्ल में जो चीजें वो मुझे मेरे हवाले कर दो, मास्टर डोहम ने कहा, और रेवन एक तवील सांस लेकर रह गया। ओ नहीं, अगर मैंने वो चीज तुम्हारे हवाले कर दी तो मेरा इसराइल जाना मुश्किल हो जाएगा। اعلی حکام کو اگر میں نے وہ چیز نہ دی تو وہ مجھے غدار سمجھ کر فوراً ہلاک کر دیں گے۔ میں تمہیں اس راز سے آگاہ کر دیتا ہوں، لیکن تم وہ چیز میرے پاس ہی رہنے دو۔ اگر وہ چیز اسرائیل نہ پہنچی تو اعلی حکام میرے ساتھ ساتھ میرے سارے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ ریون نے ماسٹر ڈوہم کی جیسے منت کرتے ہوئے کہا، پہلے راز بتاؤ، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راز جس قدر اسرائیل کے لیے اہم ہو، اس کی اتنی ہی ہمیں بھی ضرورت ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہارے لیے اور تمہارے خاندان کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے ذرائع لامحدود ہیں، میں چاہوں تو تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو اسرائیل سے نکال کر اکویما یا کسی بھی یورپی ملک میں پہنچا سکتا ہوں، جہاں تم اور تمہارا خاندان عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ ماسٹر ڈوہم نے کہا، میں بلگارنیا سے ایک نقشہ لایا ہوں جس کا تعلق بلگارنیا کی سب سے بڑی اور خفیہ لیبورٹری سے ہے، جہاں بلگارنیا نے ایٹمی بم بنا رکھا ہے۔ ریون نے چلنا میں سوچنے کے بعد ماسٹر ڈوہم کو سچ بتاتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد سن کر ماسٹر ڈوہم بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک آ گئی تھی۔ او او، کہاں ہے وہ نقشہ، دکھاؤ مجھے، ماسٹر ڈوم نے انتہائی بے چینی کے عالم میں کہا۔ میری دائیں ٹانگ کی پنڈلی پر جل جیسی ایک جھلی چڑی ہوئی ہے، اس جھلی کے نیچے وہ نقشہ موجود ہے۔ ریون نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ پارٹ فور یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب بلیک شارک کا بقیہ حصہ پارٹ فائیو میں سماعت فرمائیں۔